आकांक्षा के इशारा करते ही मैनावती ने मुड़कर देखा तो सामने रिवांश खड़ा था। उसे अपने सामने देखकर उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वो दौड़कर उसके पास गई और उसके मुंह को अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, आप पहले कैसे आ गए? आप हमारे रिवांश हो ना? बोलते हुए मैनावती की आंखें भीग चुकी थीं। रिवांश ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, हम तो यहाँ इतने सालों बाद आए हैं, फिर भी आपने हमें कैसे पहचाना माँ? एक माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, लेकिन आप तो कल आने वाले थे ना, जल्दी कैसे आ गए? मैनावती ने हैरत से पूछा। बस यूं ही, आपसे मिलना था तो इंतजार हुआ ही नहीं। बस अब हमें कभी खुद से दूर मत जाने दीजिएगा माँ। नम आंखों से रिवांश ने रानी मैनावती को गले लगा लिया। रिवांश इनके साथ कितना खुश लग रहा है। काश मैं उस पूजा को रोक पाऊँ तो ये अपनी माँ से फिर से मिल पाएगा और फिर उनके साथ खुशी खुशी रह पाएगा, उन्हें साथ देखकर आकांक्षा ने सोचा। अच्छा, आप क्या सिर्फ अपनी माँ से ही मिलेंगे? आपके पिताजी भी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं। रानी मैनावती रिवांश का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगी कि तभी उनकी नज़र आकांक्षा पर पड़ी। ये लड़की कौन है? इसने कहा था कि ये आपके साथ आई है, क्या आप इन्हें जानते हैं? रिवांश ने सिर हिलाकर हामी भरी। आपके साथ आई हैं तो हमारी मेहमान हुई ना, चलिए हम अंदर चलते हैं। मैनावती रिवांश का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाने लगी कि तभी आकांक्षा ने उसका दूसरा हाथ पकड़कर उसे वहीं रोकते हुए कहा, अभी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है रिवांश, जानते हो ना हमें क्या करना है? माँ, हम आपसे और पिताजी से बाद में मिलेंगे, अभी हमें कुछ जरूरी काम के लिए जाना है। रानी मैनावती उन्हें रोक पाती उससे पहले रिवांश आकांक्षा का हाथ पकड़कर जल्दी से जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ उससे मिलने के बाद रानी मैनावती काफी खुश थीं और उत्साहित होकर अंदर जाकर सबको बताने लगीं। चंपा, जमुना, अभी तक तुम लोगों ने सारी तैयारियां पूरी नहीं की, हमारे रिवांश तो वापस लौट भी चुके हैं, ऐसे आधी अधूरी तैयारियों के साथ उनका क्या स्वागत करोगी? रानी मैनावती की आवाज़ पूरे महल में गूंज रही थी। राजा विक्रम सिंह जी अपने कुछ सलाहकारों के साथ वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने रानी की आवाज़ सुनी तो वो हैरान थे। वो उनके पास गए और बोले, ये आप क्या कह रही हैं? अभी कुछ देर पहले ही तो हमें एक सिपाही ने आकर सूचना दी है कि राजकुमार रिवांश को आने में सुबह हो जाएगी, फिर आप किसी से मिल ली? हम सच कह रहे हैं, हम रिवांश से ही मिले हैं। उसने कहा है कि वो जल्द ही वापस आएगा, किसी काम से गया है, आकर आपसे भी मिलेगा। मैनावती ने चहकते हुए जवाब दिया। लगता है रानी सा ने कोई सपना देखा है, इतने बरसों बाद राजकुमार से मिलने जा रही हैं तब इतना उत्साह हो रहा है। राजा के पास खड़े सलाहकार ने धीमी आवाज में कहा। राजा ने उसकी बात पर हामी भरी और जोर से कहा, किसी भी इंतजाम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जैसा रानी सा अपने बेटे के लिए तैयारी करना चाहती है सब कुछ वैसा ही किया जाए। अपनी बात कहकर वो वहां से जा चुके थे। सभी लोग इसे रानी का भ्रम समझकर वापस अपने अपने कामों में लग गए। दूसरी तरफ अलीजा राजपुरोहित जी को ढूंढ रही थी। कुछ ही देर में उसे राजपुरोहित जी महल के बगीचे में मिले। वो जल्दी से उनके पास गई और बोली, राजपुरोहित जी, आप अभी मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ जरूरी चीज दिखानी है। क्या तुम्हें वो मूर्तियां मिल गई हैं? राजपुरोहित जी ने अलीजा को देखते ही पूछा। मूर्तियां तो नहीं, लेकिन उससे भी जरूरी कुछ मिला है, आप एक बार चलकर देखिए तो सही। अलीजा राजपुरोहित जी से बात कर रही थी कि तभी रिवांश और आकांक्षा भी वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर राजपुरोहित जी ने पूछा, क्या आप अपनी माँ से मिल चुके हैं राजकुमार रिवांश? हाँ, अब आगे क्या करना है? रिवांश ने पूछा। करना क्या है, अब हम जल्द से जल्द जंगल में पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि रात को होने वाली पूजा को रोक सके, आकांक्षा ने जवाब में कहा। वहां भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले अलीजा कुछ जरूरी चीज दिखाना चाहती हैं, राजपुरोहित जी ने कहा। आकांक्षा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन साथ ही वो राजपुरोहित जी की बात को भी नहीं टाल सकती थी, इसलिए उनके कहने पर वो लोग अलीजा के साथ तहखाने में गए। इस बार उन्हें अच्छे से पता था कि कहाँ जाना था, बट अब उन्हें तहखाने के अंतिम छोर तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। जैसे ही वो वहां पहुंचे, अलीजा ने पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मूर्तियों को ढूंढते हुए मैं यहां पहुंची और जब मैंने इस पत्थर को हटाकर देखा तो यहां। अलीजा ने अपनी बात खत्म नहीं की और अपने जादू से एक झटके में पत्थर को वहां से हटा दिया। सामने का नजारा देखकर उन चारों की रूह कांप गई। ये सब महल में, लेकिन ये कैसे हो सकता है? सामने स्थित दृश्य को देखकर रिवांश ने हैरानी से कहा। क्यों नहीं हो सकता राजकुमार रिवांश, आप इतने सालों तक महल में नहीं थे, आपके पीछे से कुछ भी हो सकता है। और मत भूलिए कि ये वो दौर था जब काले जादू का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था, राजपुरोहित जी ने कहा। लेकिन यहाँ महल में कौन काला जादू कर सकता है, और ये जो भी सामने है वो काले जादू से काफी बढ़कर है, ये तो साक्षात शय। आकांक्षा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले राजपुरोहित जी ने बीच में कहा, उसका नाम मत लो, ऐसा समझ लो कि इस वक्त साक्षात हम उसके सामने खड़े हैं। कहते हैं जहां भगवान का मंदिर होता है वहां भगवान विद्यमान होते हैं, और जब हम भगवान के साथ मंदिर के सामने उनका स्मरण करते हैं तो सीधे बात उन तक पहुंचती है, और यहां तो हम उसके मंदिर के सामने खड़े हैं, अगर हमने कुछ कहा तो उसे यहां तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अलीजा ने अपने जादू से पत्थर को हटाया था तब सामने शैतान का मंदिर मौजूद था। वहां हर रोज काला जादू किया जाता था और शैतान की पूजा की जाती थी। वो महल का ही एक हिस्सा था और उसे देखकर वो सभी हैरान थे कि महल में ऐसा कौन हो सकता है जो ये सब करता होगा। इसे वापस बंद कर दो अलीजा, राजपुरोहित जी ने तुरंत आदेश देते हुए कहा। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अलीजा ने अपने जादू से उस पत्थर को वापस वहीं लगा दिया। इन सबको देखकर आकांक्षा एक गहरी सोच में थी। जहां सभी वहां से बाहर निकलकर आगे जाने लगे, वहीं आकांक्षा अभी तक वहीं खड़ी कुछ सोच रही थी। क्रमशः कीप सपोर्टिंग,